नमस्कार आदाब दोस्तों, पढ़ाई का बहुत सारा तनाव है, सवाल है लेकिन जवाब नहीं, परीक्षा का डर सता रहा है, दिल और दिमाग दोनों घबरा रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज क्वेश्चन मार्क की पाठशाला में लगेगी मनोविज्ञान की क्लास। तो चलिए सुनते हैं अपने फेवरेट शिक्षक की जरूरी बातें।
मैं उमा सर रामदेशी जादव साइंस कॉलेज व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी आपको शिक्षण की शैलियाँ क्या है उनके बारे में बताती हूँ। तो शिक्षण शैली का तात्पर्य उस शैली से है जिसमें प्रत्येक अध्ययनकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है और नई एवं जटिल सूचनाओं को प्रक्रमण कर उन्हें याद रखता है। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कभी कभी एक ही परिवार के होते हैं, लेकिन विद्यालय में कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जबकि दूसरे उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षण के संबंध में बहुत शोध किए गए हैं जो यह एक ही वर्ग, संस्कृति, समुदाय या सामाजिक आर्थिक समूह तथा विभिन्न समूहों के सदस्यों को सीखने की शैली एवं भिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। यह कैसी शैली जिसमें प्रत्येक अध्ययनकर्ता ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करता है तथा नई एवं जटिल सूचनाओं का प्रक्रमण कर उन्हें याद रखता है। यह अंतःक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी किसी कक्षा के बच्चे अपने व्यक्तित्व, सांस्कृतिक अनुभवों और मूल्यों में अनन्य हैं। विभिन्न विद्यार्थी विभिन्न अधिक शिक्षण वातावरण, शिक्षण प्रकारताएं पसंद करते हैं तथा उन सब की अलग अलग शक्तियां, प्रतिभाएं तथा दुर्बलताएं होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं का परीक्षण कर यह निर्धारित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षणकर्ता में एकाग्रता उत्पन्न करने और उसे बनाए रखने, उसके प्रक्रमण की नैसर्गिक शैली के प्रति अनुक्रियाएं करने तथा दीर्घकालिक स्मृति को सुगम बनाने के लिए क्या सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी विद्यार्थी की शिक्षण शैली का निर्धारण करने के लिए अनेक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। शिक्षण शैलियाँ मुख्यतः प्रात्यक्षिक प्राकृता, सूचना प्रक्रम तथा व्यक्तित्व प्रतिरूप से भी होती है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक वातावरण के प्रति जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रियाएं प्रात्यक्षिक प्रकारता कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों के शिक्षाओं से है जिसके द्वारा वे सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे श्रवण दृष्टि, घ्राण, गति तथा स्पर्श संबंधी सूचनाएं। नेक्स्ट है सूचना प्रक्रमण। हमारी संरचना के अनुसार हमारे सोचने और समस्या समाधान करने के तरीके तथा सूचना याद करने के तरीके के बीच अंतर करता है। इसको सूचना प्रक्रमण के तरीके के रूप में सोचा जा सकता है, जैसे सक्रिय, विमर्शी, संवेदी, अंतःप्राज्ञात्मक, अनुक्रमिक, सार्वभौमिक, क्रमिक, सहकालिक इत्यादि। नेक्स्ट है व्यक्तित्व प्रतिरूप। हमारे अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करने के तरीके हैं। इनमें से प्रतीक का सूचनाओं को देखने, व्यवस्थित एवं याद करने का एक पसंदीदा, सुसंगत तथा विशिष्ट तरीका होता है। यह उपागम इस बात को समझने पर बल देता है कि कैसे व्यक्तित्व परिवेश के साथ लोगों के अंतःक्रिया करने के तरीकों को प्रभावित करता है तथा यह कैसे शिक्षण वातावरण में व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ अनुक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करता है। शिक्षण शैलियाँ कई आयामों में भिन्न होती है। जैसे एंडरसन ने शिक्षण की विश्लेषणात्मक तथा संबंधात्मक शैलियों में अंतर किया है। ये संबंधात्मक शैली वाले व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई के रूप में प्रदर्शित सामग्री का शिक्षण सबसे अच्छी तरह से करते हैं। वे इकाई के अंशों को संपूर्ण के साथ उनके संबंध के आधार पर समझते हैं। दूसरी ओर विश्लेषणात्मक शिक्षण शैली वाले व्यक्ति तब अधिक सुगमता से सीखते हैं जब सूचनाएं एक एक स्टेप करके संचयी अनुक्रमिक प्रतिरूप में प्रस्तुत की जाती है, जो उनमें संप्रत्यात्मक समझ के रूप में विकसित होती है।
ये देखना याद रखना होगा कि शिक्षण शैलियाँ एक पैमाने पर विभिन्न बिंदुओं के समान है जो हमें विभिन्न प्रकार के मानस चित्रण को समझने में सहायता करते हैं। ये व्यक्तियों की विशेषताएं नहीं बताते, अतएव इनमें जनसंख्या को एक विशिष्ट श्रेणी चाहे में नहीं बांटना चाहिए। चाहे हमारी वरीयता कोई भी हो, हम किसी भी शैली के द्वारा शिक्षण करने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि विद्यालयों में हजारों बच्चे पढ़ने के लिए प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया की मांग को पूरा कर पाना बहुत कठिन होता है और परिणामस्वरूप वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। पढ़ाई को बीच में छोड़ देने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदन, सामाजिक सांवेगिक व्यतिक्रम, परिवार की गरीबी, सांस्कृतिक विश्वास और मानक या अन्य पर्यावरणीय प्रभाव। इन कारकों के अतिरिक्त शिक्षण असक्तता भी एक ऐसा कारण है जो पढ़ाई को जारी रखने में बाधक डालती है। इसके कारण विद्यालय शिक्षण अर्थात ज्ञान तथा विभिन्न कौशलों का अर्जन करना बहुत कठिन हो जाता है। सीखने में असक्त बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में नहीं जा पाते और पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। अब सीखने की अक्षमता व्यक्ति द्वारा सीखने में बाधक होती है। सीखने में अक्षम व्यक्तियों में अतिक्रियाशीलता, काल बोध का अभाव तथा नेत्र हस्त की समन्वय की कमी होती है। शिक्षण या शिक्षण संबंधी असक्तता कई प्रकार के विकारों का समूह है जिसके कारण पढ़ने लिखने बोलने या गणित का प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। ये विकार बच्चे में जन्मजात होते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इसका कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है, इस विकार से ग्रसित व्यक्तियों में अवधान संबंधी दोष पाए जाते हैं। यह अधिक समय तक किसी विषय पर ध्यान नहीं लगा पाता और हमेशा गतिशीलता रहती है। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे लिखने पढ़ने तथा बोलने में प्रायः कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनमें श्रवण दोष नहीं होता, फिर भी उनमें सुनने की समस्याएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों में स्थान और समय का सही ज्ञान नहीं होता। ये थोड़ी परिचित जगहों को भी ठीक से पहचान नहीं पाते और प्रायः खो जाते हैं। कहीं नियत समय पर इनके लिए पहुंचना मुश्किल होता है, या तो ये बहुत पहले पहुंच जाएंगे या बहुत देर से। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों में शारीरिक संतुलन, हस्त निपुणता तथा पेशीय समन्वय निम्न कोटि का होता है, अतः कौशल सीखने में इन्हें बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे मौखिक निर्देशों को ठीक से समझकर काम नहीं कर पाते प्रायः गलती करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों में प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष भी पाए जाते हैं, फलतः दृष्टि श्रवण स्पर्श तथा गति संबंधी संकेतों को समझने में इनमें 5 त्रुटियाँ होती हैं। नेक्स्ट, ऐसे बच्चे सामाजिक संबंधों को ठीक से नहीं समझ पाते, यह नहीं जान पाते कि उनके वर्ग का कौन सहपाठी उनका मित्र है और कौन नहीं। नेक्स्ट, ऐसे अधिकांश बच्चों में पठन वैकल्प के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ट और ठ अक्षरों या क और ख में अंतर करना इनके लिए कठिन होता है, फलतः ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते और वाक्यों का निर्माण करने में भी अक्षम होते हैं। शिक्षण अक्षमता के शिकार बच्चे निश्चित रूप से दुर्बल बुद्धि या मानसिक रोगी नहीं होते। इनका इलाज संभव है और इनके लक्षणों को मनोवैज्ञानिक तथा यौगिक उपचारों के द्वारा दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।